सिद्धिभ्यः
ॐ
नमः सिद्धिभ्यः
ॐ
नमः सिद्धिभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि भव्य जीवों के आत्मकल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह उपदेश किसी एक संप्रदाय विशेष को नहीं दिया। उन्होंने जीव मात्र को उपदेश दिया था, समस्त भव्य जीवों के कल्याण के लिए दिया था, जन जन के हित के लिए दिया था। इसलिए उस धर्म को हम जैन धर्म तो कहते ही हैं, परंतु जैन धर्म ऐसा कहने की अपेक्षा जीव धर्म, जीव शासन ये कहना बहुत अच्छा प्रतीत होता। जैनम जयतु शासनम, इसको सुनते ही सबको ऐसा लगता है कि यह केवल जैनों को दिया गया उपदेश है और सामान्य वर्ग, सामान्य जीव, संसारी प्राणी जो केवल संप्रदाय को जानता है, धर्म को नहीं जानता है। सच्चे धर्म की परिभाषा को यदि वह नहीं जानता है तो वह यही सोचता है जैनम जयतु शासनम, यानी जैनियों का शासन जयवंत रहे और हम जैसे सामान्य लोगों का शासन पीछे रहे। उस जीव को उसे सुन करके तकलीफ हो सकती है कि तीर्थंकरों ने केवल जैनों को ही उपदेश दिया और जो उन्होंने उपदेश दिया उसको जैन धर्म कहा गया, और जैन धर्म कहा गया तो उन्हीं के लिए रहा और हम लोगों के लिए नहीं रहा। ऐसा विचार आना स्वाभाविक है, आता भी है, किसको नहीं आता, ये तो आप लोगों को भी आता होगा ये हमारा धर्म है। परंतु यहां जिनेंद्र भगवान के शासन में हमारा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सार्वजनिक है, सर्वभव जीवों के लिए उपदेश दिया गया है, इसलिए इसको जैन शासन ये तो कहां ही है, गलत नहीं है। ये शब्द केवल ज्ञानियों के लिए तो समझ में आएगा, किंतु सर्वसाधारण प्राणियों को जैन शासन कहने की अपेक्षा जीव शासन कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी हम सब भी उसमें शामिल हैं और हमारे लिए भी वह धर्म है और इसलिए हम भी उसमें शामिल होने के अधिकारी हैं। ऐसा समझेंगे, ऐसा विचार करेंगे, विचार करने के लिए उनको अवकाश मिलेगा, विचार करने के लिए उनको समय मिलेगा। जैनम जैतु शासनम ये आप अपने लिए कहो, लेकिन जीवम जैतु शासनम यह जीवों के लिए कहो। जैन शासन जैनियों के लिए नहीं है, जैन शासन जीव मात्र के लिए है। इसलिए मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोग्नि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जीव धर्मोस्तु मंगलम। समस्त जीव मात्र के लिए है ना, इसलिए जीव मात्र के लिए यदि है तो क्या कहें, जीव धर्मोस्तु मंगलम। और मंगलमय जो धर्म होता है वो रत्नत्रय होता है। मंगलमय धर्म जिसको हम कहते हैं वह मंगल क्या है, रत्नत्रय है ना, वह अहिंसा रूप है। रत्नत्रय अहिंसा की सिद्धि का उपाय है। रत्नत्रय किसका उपाय है, अहिंसक बनने का उपाय है। जीवन में जब सर्वप्रथम अपने जीवन में सम्यक दर्शन का आवागमन होता है उस समय हम अहिंसक बनते हैं। कहीं ना कहीं किसी कोने में 10 प्रकार के परिग्रहों को धारण करते हुए भी अविरत सम्यक दृष्टि कहीं ना कहीं से अहिंसक है। कुछ भी उन्होंने त्याग नहीं किया है लेकिन अहिंसक है। किस अपेक्षा से अहिंसक है तो ये अपन को विचार करना चाहिए। हिंसा क्या है, अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा, हिंसा 2 प्रकार की हिंसा हुआ करती है। जिसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है वह सम्यक दृष्टि आत्मा ये सोचता है कि बहिरंग हिंसा ये कर्मबंध का कारण है और अभ्यंतरी हिंसा भी मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे आत्मा में जो उत्पन्न होती है वह हिंसा, भाव हिंसा, कषाय रूप, मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप जो ये परिणाम होते हैं ये हिंसा को जन्म देते हैं। अज्ञान भाव हिंसा को जन्म देता है, कषाय भाव हिंसा को जन्म देता है, मिथ्यात्व भाव हिंसा को जन्म देता है। और ये अज्ञान और मिथ्यात्व ये दोनों जो भाव होते हैं जीवात्मा के भीतर ये किस कारण से होते हैं, केवल एक मोहनी कारण, मोहनी कर्म, और एक ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव अज्ञानी होता है और मोहनी कर्म के उदय में जीव मोही होता है। और मोही जब होता है तब उस अवस्था में उस जीव के पास जो अज्ञान रहता है वो जरा घनीभूत होता है। और मोहनी कर्म के अभाव में भी जब यह जीव अज्ञानी रहता है तब वह अज्ञान बहुत पतला होता है, गाढ़ा घनीभूत नहीं होता। आप गुणस्थान की अपेक्षा से इसका विचार भी कर सकते हैं। मोहनी कर्म का सद्भाव कहां से कहां तक है, पहले गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान, 10वें तक कहो, 12वें तक नहीं। मोहनी कर्म का अभाव जब होता है तब वह 12वां गुणस्थान प्रकट होता है। पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जीव यह मोहनी कर्म से युक्त रहता है। मोहनी कर्म के सद्भाव से भी यह अज्ञानी कहलाता है और मोहनी कर्म के क्षय से भी यह अज्ञानी कहलाता है। वहां अज्ञानी कहना केवल ज्ञान सापेक्ष है और यहां अज्ञानी कहना मोहनी कर्म सापेक्ष है। मोहनी कर्म के उदय से आत्मा में जो मोह भाव बढ़ता है ये अज्ञान के कारण से बढ़ता है और मोह के साथ जो अज्ञान बढ़ता है वह ज्यादा घनीभूत होता है और उसमें भी फिर तरतमता बनती है। 10वें गुणस्थान तक यदि मोह कर्म का उदय है, 10वें गुणस्थान तक यदि मोह कर्म का वह सद्भाव है, तो तो पहले गुण स्थान में सबसे ज्यादा घनीभूत अज्ञान और घनीभूत मोह होने के कारण से उस अज्ञान को हम घनीभूत कहते हैं। यह मोह भाव जीव के लिए सर्वप्रथम हानिकारक है। आत्मा के भीतर यदि कोई सबसे बड़ी हिंसा है तो अज्ञान नहीं, मोह भाव है। जो मोह भाव उत्पन्न होने के कारण से हमारा अज्ञान घनीभूत हो रहा है, उसके घनीभूत होने में मोह कारण है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह मिथ्यात्व और चारित्र मोह कषाय। कषाय भी आत्मा में अज्ञान को पैदा करता है और दर्शन मोह भी आत्मा में अज्ञान को पैदा करता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से तो यह जीव विपरीत अभिनिवेश परिणाम को धारण करता है, अनंतानुबंधी कषाय। मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व के उदय में उत्पन्न होने वाला अज्ञान भाव, ये अंधश्रद्धा के भाव है ना। जीव अंधश्रद्धालु होता है, कब अंधश्रद्धालु होता है, मिथ्यात्व के उदय में। किंतु कषाय के उदय में वह अंधश्रद्धालु नहीं होता है, वह अंधश्रद्धालु होने के उपरांत अंधश्रद्धा के जो परिणाम हैं, उन परिणामों की पुष्टि करने के लिए क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से उसको और पुष्ट बना देता है। मिथ्यात्व को पुष्ट बनाने वाला कषाय है या मिथ्यात्व को पुष्ट बनाने वाला केवल मिथ्यात्व ही है, कषाय है। कषाय मिथ्यात्व को पुष्ट बनाता है। और वस्तुतः मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व कुछ भी नहीं है, अंधश्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। और ये अंधश्रद्धा तो हमारे अनादिकालीन अनभिज्ञ अवस्था के कारण कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कषाय क्या है और वीतरागता क्या है, इसका परिचय हमने अनादिकाल से नहीं पाया है। इस कारण से हमको मिथ्यात्व का उदय रहता है। अगर ये भेदभाव हमें पता चल जाए तो इसी का नाम तो ज्ञान है। वीतरागता क्या है और कषाय क्या है, अंधश्रद्धा क्या है और सच्ची श्रद्धा क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जीव क्या है और अजीव क्या है, इसका भेद हमें पता चल जाए तो वह मिथ्यात्व कर्म का उदय रह सकता है क्या, जो अंधश्रद्धा को बढ़ा रहा है। मिथ्यात्व तब तक उदय में रहता है जब तक कि उसके पास ये अज्ञान रहता है, मिथ्यात्व जनित अज्ञान जो अंधश्रद्धा को पैदा करता है। ऐसे अंधश्रद्धा को पैदा करने वाला अज्ञान भाव जब तक उदय में रहता है तब तक जीव को एक ही रास्ता दिखता है, मैं जो जान रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, मैंने जो अभी तक जाना है, और आसपास में जो लोग जिस चीज को जानकर मुझे कहते हैं वह मुझे सच लगता है। और क्षण पर क्षण जीव संसार में अज्ञानी रहते हैं कि ज्ञानी रहते हैं, अज्ञानी। और अज्ञानी जीव को क्या समझाएगा, वो भी यही कहेगा ना, जो मैंने आज तक किया है वो गलत नहीं हो सकता, यही कहेगा ना, मैंने आज तक जो समझा है, अनुभव में लाया है, वह सुख का कारण है, यही बतलाएगा। और एक अज्ञानी जीव को बहुत सारे अज्ञानी जीव उसी को पुष्ट करते हैं तो उस अज्ञानता से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता और फिर सभी अटकते हैं बहुमत को लेकर के। ये अज्ञानी जीव एक जो सोच रहा था थोड़ा बहुत, और सोचने ही नहीं दिया, आप जो कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, अनादिकाल से हम भी करते आए हैं, वो सच है। तो कहता हाँ सच है क्या ये, तो जितने लोगों ने सच 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 कहा ना, तो वहां झूठ भी सच हो गया। झूठ पर भी अगर बहुत वोट पड़ते हैं तो वह सच लगने लगता है। ये किसको? अज्ञानी जीव को। परंतु समझदार जीव को, समझदार जीव देखता है कि अज्ञानियों का बहुमत है, ये तो चलता ही रहेगा, वो सोचता है ऐसा, ये तो चलता ही है। वह उसको उपेक्षा भाव से देखता है, ज्ञानी जीव उसको उपेक्षा भाव से देखता है, और उपेक्षा भाव से देखता है इसलिए बहुमत को नहीं देखता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं तो ये सच है क्या नहीं, उसके पास विचार करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, इसलिए वो सोचने लगता है कि वास्तविक रूप से इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो लोग भ्रमित हैं। भ्रमित कह करके वे उपेक्षा भाव से उन लोगों को देखता है, उनके मत को, बहुमत को भी उपेक्षा भाव से देखता है, परंतु जहां सच्चाई है वो अलग एकाध जीव के भीतर ही होता है, वहां तक जाने का वो प्रयास करता है। सच्चाई में कभी भी बहुमत नहीं हो सकता, सच्चाई अल्पमत में ही अनादिकाल से था, है और भविष्य में भी अनादिकाल तक सच्चाई अल्पमत में ही रहेगी। बहुमत के आधार से इसी कारण धर्म को देखा नहीं जाता। धर्म जो होता है वो सच सत्य होता है, और अधर्म जो होता है वो असत्य होता है। अधर्म में सत्य नहीं पाया जाता और धर्म में असत्य नहीं पाया जाता। इस कारण से ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव, इन दोनों में सोच सोच में फर्क आ जाता है। अज्ञानी जीव अज्ञान के कारण वह अधर्म को धर्म समझ करके बैठता है, असत्य को सत्य समझ करके बैठता है, और उस संबंध में वह सोचना लगता है कि बहुत से लोग इसको कर रहे हैं तो यह सत्य कैसे हो सकता है, असत्य कैसे हो सकता है, असत्य बहुत लोग करना चाहिए, किसी कार्य को बहुत से लोग कर रहे हो तो वह सच ही लगता है, और एकाध व्यक्ति उससे हट करके चल रहा है वो असत्य लगता है। अरे ये पागल हो गया है, दुनिया अलग रास्ते से चल रही है और ये अलग रास्ते से चल रहा है, उसको पागल बना देते हैं। अज्ञानी अज्ञानी सब लोग मिलकर के उसको पागल बना देते हैं, लेकिन सही में वो ज्ञानी हो तो क्या अपने रास्ते को छोड़ेगा?
नहीं।
क्या किसी से डरेगा?
नहीं।
क्या किसी से शर्म खाएगा?
नहीं।
क्या किसी से संकुचित भाव धारण करेगा? नहीं करेगा। उसके पास इतना साहस होता है कि उसी रास्ते से चलेगा, वो छोड़ेगा नहीं। दुनिया सब मिलकर के उसको पागल बनाए, वो पागल तो होगा नहीं, क्योंकि पागल 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 कहने से आपको अगर टेंशन आता है तो पागल बनने का समय आ जाता है। अगर टेंशन नहीं आता है तो आप पागल बनेंगे ही नहीं। हर लोग आकर के सता रहे हैं, हर लोग आकर के ऐसा ऐसा कह रहे हैं, हर लोग आकर के निंदा कर रहे हैं, हर लोग आकर के कुछ भी कहते जा रहे हैं, तो भी वह प्रसन्न रहता है। ठीक है, शांत रहता। धर्म एक में भी हो, दुनिया में किसी आत्मा के अंदर धर्म नहीं है, सिर्फ आपके अंदर अकेले में धर्म है, तो क्या वो धर्म नहीं है? क्या उसका महत्व नहीं? हम धर्म को अगर अकेले कर रहे हो तो उसका महत्व नहीं? क्या इसके लिए भी सपोर्ट चाहिए? तो ये धारणा हटाना चाहिए, सच्चे धर्म को करने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और उसके साथ साहस के साथ अपने को चलना चाहिए। यदि सत्य ही है तो चलो ना, नहीं वो वैसा करते हैं ऐसा करते हैं, निंदा करते हैं, तो निंदा से घबरा रहे हैं, तो निंदा से घबरा करके आप धर्म को छोड़ोगे? राम की निंदा बहुत करने लगे लोग, वो सीता को ये वापस ले आए, ऐसी सीता को जो रावण के साथ रही। लोगों को देखने की नजरिया ही अलग होती है, सत्य को भी वो अपनी दृष्टि से असत्य बना करके ही जानते देखने लगते। और सीता में सत्यता थी क्या? नहीं
थी।
निर्दोष थी क्या? नहीं वो
थी।
पर निंदा किसकी हो रही थी? सीता के वजह से राम की, सीता के वजह से राम की निंदा हो रही थी। और राम ने इसलिए उनसे पीड़ित होकर एक शायद सम्यक दृष्टि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है, शायद सम्यक दृष्टि भी साहस न करते हुए कुछ रास्ता निकाल सकता है, परंतु शायद सम्यक दृष्टि है ना, सब कार्य को संभालने की योग्यता थी, अपेक्षाएं ज्ञात थी, किस रास्ते से मुझे चलना चाहिए, महान विवेकी थे वो राम। सीता को भले ही उन्होंने घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया, जंगल भेज दिया, लेकिन क्यों भेजा? मेरी निंदा ना हो इसलिए, खुद की निंदा की चिंता नहीं थी उनको, खुद की निंदा का परवाह नहीं था, परंतु सीता सत्य है इसको मालूम होते हुए भी, यह बात मालूम होते हुए भी उन्होंने सीता को निकाला। सीता को इसलिए निकाला, सीता कैसी सत्य है, सीता के पास कैसे महान शील है, इसको दिखाना था ना। और सीता में वह निखार आने लायक योग्यता भी थी ना। पहले तो उन्होंने जंगल भेज दिया, और पुनः जब सीता आई तो अग्निकुंड की रचना करा दी, उसमें से निकल आना है, अंदर आना हो तो ऐसा सीधा नहीं आना। और वह अग्निकुंड में पति की आज्ञा मानकर अग्निकुंड में भी बैठने को तैयार हो गई। तो ये दिखाना था, इसलिए जंगल नहीं भेजा कि खुद की निंदा हो रही थी इसलिए सीता को निकाल दिया। खुद की निंदा का डर सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव को खुद की निंदा का डर नहीं रहता, उसको डर रहता है कहीं धर्म की हानि ना हो, सत्य पर आंच ना आ जाए, सत्य डूब ना जाए, सत्य की क्रिया और सत्य ये दोनों डूब ना जाए, ये भय रहता है। सम्यक दृष्टि जीव धर्म के डूबने से डरता है, अपनी निंदा से नहीं डरता। कौन क्या कहेगा, मैं ऐसा करूंगा, अकेला करूंगा तो कौन क्या कहेगा, ये तो मन में आता ही नहीं है जो सम्यक दृष्टि है। ऐसा सम्यक तो राम जैसा सम्यक तो, क्योंकि वो क्षायिक सम्यक तो है और हम लोगों का क्षायोक्षणिक, ये कमजोर है। इसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया, ये क्षायोक्षणिक सम्यक तो है भव्य जीवों, अगर ये सम्यक दर्शन तुम लोगों के पास रहेगा तो ये वृद्ध के हाथ में लाठी होती है ना, वो कैसी होती? वृद्ध तो अशक्त होता है, और उनके हाथ में एक लाठी दिया जाता है चलने के सहारा, चलने का सहारा है, लाठी दिया जाता है, और उस लाठी को लेकर के जब वृद्ध चलता है तो हाथ भी ऐसा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन रूपी लाठी आपके हाथ में है तो उस सम्यक्तु में इतना बल नहीं है कि आपके आत्मा में ऐसा बल पैदा कर दे कि आपका हाथ न हिले, आपके आत्मा हिले न, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, सम्यक प्रकृति के उदय में भी, क्योंकि वह दर्शन मोहिनी की जाति है ना। हाँ, सम्यक दर्शन को नष्ट तो नहीं करता, सम्यक दर्शन का अभाव तो नहीं करा सकता, किंतु वृद्ध के हाथ की लाठी की तरह अपने आत्मा में इतना ठोस बल पैदा नहीं करा सकता कि आत्मा अचल रहे, सत्य पर अड़िग रहे। उसको कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है और सम्यक दर्शन कलंकित होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी वह कहीं ना कहीं से शंका करने लगता है, ये होता है। वो दूसरे से भयभीत रहता है कि हमारे गुरु के बारे में ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं। वो दूसरे से डरकर गुरु को ही समझाने के लिए उतारो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ में, वृद्ध के हाथ में जैसी लाठी रहती है ना, वो लाठी है। तुम तो वृद्ध हो, तुम जवान नहीं हो सम्यक दर्शन से। तुम सम्यक दर्शन से जवान होते तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होते। ये क्षायोपशमिक सम्यक तो है ना, ये लाठी तुमको भी हिलाएगी और खुद भी हिलती रहेगी। ये लाठी का ऐसा प्रभाव रहता है कि ये आत्मा में ठोस सत्य धर्म पर एकदम ठोस परिणाम, सत्य परिणाम, अड़िग परिणाम, निर्भय परिणाम, निरातंकित परिणाम, निरातंकित, कष्ट से रहित परिणाम को पैदा नहीं करा देता, ठोस नहीं बनाता हमें। वो कहीं ना कहीं से अटक जाता है और उस समय दोष तो लगता है। चल मल आगाड़ दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? यह है सम्यक प्रकृति, यह सम्यक प्रकृति का प्रभाव। सम्यक दृष्टि है, शुभोपयोगी है, परंतु उसका शुभोपयोग जघन्य शुभोपयोग है। वो शुभोपयोग भी जघन्य इसलिए है, जब जब वह सम्यक प्रकृति के उदय में कलंकित होता है तब शुभोपयोग उत्कृष्ट नहीं रहता, शुभोपयोग बलवान नहीं रहता, वो न मध्यम रहता है न उत्कृष्ट रहता है, जघन्य शुभोपयोगी बनता है और शुभोपयोग भी कलंकित होता है, क्योंकि गुरु को ही समझाना चाहता है। अरे क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करना है, कहां भाग रहे हो, किसकी बात सुन रहे हो? दुनिया भी टूट पड़ जाए गुरु के ऊपर, गुरु के संबंध में कुछ भी कहे, हमारे देव के संबंध में कुछ भी कहे, गुरु वीतरागी हैं, देव वीतरागी हैं, वो निर्भीक हैं, वो किसी भी तूफान से डिग नहीं सकते। ये सच्ची श्रद्धा है क्या? नहीं, गुरु किसी तूफान से डिग नहीं सकते, ये सच्ची श्रद्धा जिसको ना हो तो सम्यक प्रकृति वहां काम करेगी, वो डिगा देगी, शुभोपयोग से भी हटा देगी। और ऐसा ही ज्यादा कुछ हो गया तो लाठी हाथ से निकल जाएगी, और एक बार लाठी हाथ से निकल गई तो वह शुभोपयोग को छोड़कर अशुभोपयोग में आ जाएगा। आना है क्या अशुभोपयोग में? अशुभोपयोगम शरणम गच्छामि कहते हो क्या कभी? अशुभोपयोग की शरण में जाना चाहते हो क्या? नहीं, अशुभोपयोग में नहीं जाना है, हमको शुभोपयोग की शरण में रहना है। और आज पंचम काल में शुभोपयोग की शरण में रहने वाले जीव को दो ही सम्यक दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं, एक औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, द्वितीयोपशम भी नहीं है आज, क्योंकि प्रथम तीन सहनन पंचम काल में नहीं मिलते। द्वितीयोपशम सम्यक तो पहले के तीन शरण वालों को होता है द्वितीय उपशम सम्यक्तु, क्योंकि श्रेणी चढ़ता है ना, श्रेणी चढ़ने वाला ही अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है ना। अनंतानुबंधी का विसंयोजन क्या आप सौपशम सम्यक्तु के द्वारा कर सकते हैं? और सहनन निरपेक्ष, आज चौथा और पांचवा और छठा सहनन है, ये सहनन नहीं मिला है और अनंतानुबंधी का आप विसंयोजना करना चाहते हैं तो क्या ये संभव है? और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि विसंयोजना भी करता है और नहीं भी करता, दोनों बातें हैं। और विसंयोजना करो या न करो, लेकिन उपशम श्रेणी चढ़ना हो तो सहनन कौन सा चाहिए, सम्यक तो कौन सा चाहिए, सहनन कौन सा चाहिए हैं? श्रेणी चढ़ना चाहते हो ना, उपशम श्रेणी चढ़ना चाहते हैं, चढ़ो कोई बात नहीं। सम्यक तो कौन कौन से चाहिए? क्या क्षोपशम सम्यक तो चलेगा? नहीं चलेगा। प्रथमोपशम सम्यक तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्षायिक चलेगा? क्षायिक, क्षायिक सम्यक दर्शन ये चलता है और द्वितीयोपशम सम्यक तो चलता है। तो ये द्वितीयोपशम सम्यक तो और क्षायिक सम्यक तो, ये दो सम्यक तो ऐसे हैं। द्वितीयोपशम सम्यक तो प्रथम तीन सहनन के द्वारा हो सकता, प्रथम तीन सहनन वालों को द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, परंतु क्षायिक सम्यक तो और महंगा पड़ता है। वो कहता है कि जब तक तुम पहले सहनन को धारण करके जन्म नहीं लोगे तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकता। पहला सहनन पा जाओ, मनुष्य बनकर के आओ और किसी गति में नहीं, पहला सहनन को धारण करके तिरेच्य गति में जन्म नहीं लेना, मनुष्य गति में जन्म लेना। मनुष्य गति में ही मनुष्यों को ही मैं प्राप्त होता हूं। और यदि तुम क्षौपशम सम्यक दृष्टि हो और द्वादशांग श्रुत केवली हो तो तुम्हें किसी भी बाह्य निमित्त के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं तुमको प्राप्त हो जाता हूं। और यदि तुम क्षौपशम सम्यक दृष्टि है, द्वादशांग श्रुत केवली नहीं है, तो तुमको वज्रोषभ नारासनन होते हुए भी और तुम क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी तुमको बाह्य निमित्त से ही क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। मैं आऊंगा तो पर निमित्त से ही आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा तो पर निमित्त से ही आऊंगा। तो दूसरे के पास जाओ, क्षौपशम सम्यक दृष्टि हो तो दूसरे के पास जाओ। किसके पास जाओ? या तो केवली के पास जाओ और या तो श्रुत केवली के पास जाओ। तो श्रुत केवली मिले तो छद्मस्त मुनि महाराज मिले। श्रुत केवली का मतलब क्या होता है? छद्मस्त मुनि महाराज, क्या केवल ज्ञानी मुनि महाराज? तो छद्मस्त मुनि महाराज के पास द्वादशांग का जो ज्ञान होता है, द्वादशांग श्रुत का, उनके परिणामों में जो विशुद्धि होती है और वो जो व्याख्यान करते हैं उस वक्त, उस व्याख्यान को सुनकर के उनके पाद मूल में जो विशुद्धि बढ़ती है, वह जो शिव नारायणधारी है, ये मनुष्य सौक्षम सम्यक दृष्टि है, परंतु उनके चरणों में गए बिना क्षायिक सम्यक्तों को प्राप्त करने योग्य विशुद्धि नहीं होती, नहीं होती। देखो कैसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, यहां समझ में आता है कर सकता है क्या नहीं? वज्रषभ नाराज सहनन लेकर के बैठे हैं और फिर भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में दूसरा कारण आवश्यक है कि अनावश्यक है इस व्यक्ति को? आवश्यक है, सर्वथा आवश्यक है। तो वो परश्रुत केवली इस वज्रषभ नाराज सहनधारी क्षौपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य को कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। तो कहते हैं इस मनुष्य को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सब कुछ कर सकता है, इसलिए जाओ श्रुत केवली के पास जाओ, और वहां जाओगे तुमको क्षायिक सम्यक तो मिलेगा। यहां नहीं जाते हो तो केवली के पास जाओ, केवली भी निमित्त हैं और श्रुत केवली भी निमित्त हैं। कहीं भी जाओ, वहां जाओगे तो ही तुम्हारा क्षाउक्षण सम्यक तो क्षायिक रूप में ढलेगा। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी अनंतानुबंधी की चार प्रकृति, इनका क्षय होगा। दर्शन मोहिनी के तीन और चारित्र मोहिनी के चार, ऐसे सात प्रकृतियों का क्षय जब तक नहीं होता तब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। और क्षपना का प्रारंभ किसके सानिध्य में, किसके निमित्त से करेगा? केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में करेगा। क्षपना का प्रारंभ मनुष्य ही करता है, वज्रवृषभ नारासनन धारी ही करता है। अगर वह स्वयं श्रुत केवली हो तो उस समय क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। ये कहो कोई बात नहीं, अनेकांत से कहो, एकांत मत लगाओ कहीं भी। मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना चाहता हूं, क्षाउक्षम सम्यक दृष्टि हूं वर्तमान में, और फिर दूसरा द्रव्य मुझे कुछ नहीं कर सकता, कहो। अपने ऊपर जब बीतती है कोई घटना, उस वक्त उसको देख करके कहो। सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि है, वैभाविक परिणति से मुक्त है, उनके पास भी क्षायिक सम्यक दर्शन है। अनंत गुण सारे के सारे आत्मा के शुद्ध हैं, एक भी गुण उनका अशुद्ध नहीं है, वो संपूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर चुके हैं और वो मोक्ष गए हैं। सिद्धालय में वहां बैठे हैं, सिद्धालय का मतलब अंतिम वात वलय के नीचे के स्थान को सिद्धालय कहते हैं, सिद्ध शिला को सिद्धालय नहीं कहते। अंतिम वात वलय के नीचे के भाग को, नीचे का भाग मतलब जहां वो समाप्त हो गया उसके अंदर के भाग को, उसको सिद्धालय कहते हैं, जहां पर सिद्ध परमेष्टि अनंतानंत विराजमान है। उस सिद्ध परमेष्टि को दूसरे जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं, या एक सिद्ध परमेष्टि में अनंत सिद्ध परमेष्टि प्रविष्ट हुए हैं, वे एक दूसरे को कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बात वहां लागू होती है कि एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को कुछ नहीं कर सकते। तो सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान कुछ नहीं कर सकते, ये सत्य है। क्या कर सकते? मैं अभी आया हूं, जगह नहीं है, थोड़ा उधर खिसका के बैठो, ऐसा प्रेरणा देते? और उनके आने से सही बात है इनको जगह देनी पड़ेगी ऐसा कह करके उनकी बात को सुनते? नहीं। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता वहां, परंतु सिद्ध भगवान को क्या सारे द्रव्य ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हैं? हाँ? अगर अधर्म द्रव्य न होता तो सिद्ध परमिष्टि को क्या करना पड़ता? गमन ही करते रहना पड़ता, रुकने का सवाल ही नहीं। क्यों? अधर्म द्रव्य नहीं है, और अधर्म द्रव्य के बिना जीव द्रव्य कहीं स्थिर हो नहीं सकता। तो सिद्ध परमिष्टि को सहायता पहुंचाने वाला वहां रुके हुए हैं, एक सेंटीमीटर भी इधर के उधर खिसक नहीं पा रहे हैं और खिसक नहीं सकते, उनके पास शक्ति नहीं है खिसकने की, अनंत बलशाली होकर के खिसकने की शक्ति नहीं है, और धर्म द्रव्य सहायक सामने है, खिसकना चाहो तो खिसक सकते, अनंत बलशाली है। धर्म द्रव्य वहीं पर है, अधर्म द्रव्य वहीं पर है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, छह द्रव्य वहां पर है, अनंत अनंत जीव द्रव्य भी वहां है, सिद्ध भगवान भी हैं और अशुद्ध आत्माएं भी, निगोदी जीव, लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर निगोदी जीव हैं, कोई एक भी आकाश प्रदेश खाली नहीं है, सब जगह निगोदी जीव है। वो अशुद्ध जीव, निगोदी जीव सिद्ध परमेष्टि को कुछ कर सकते हैं? और सिद्ध परमेष्टि उनके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और सिद्ध भगवान को भी कुछ नहीं कर सकते, परंतु आधर्म द्रव्य सिद्ध भगवान को कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? स्थिर रहने के लिए सहयोग दे रहा है। अगर ये विचार करो, अधर्म द्रव्य लोक में न होता तो सिद्ध परमिष्टिका क्या होता? सतत गमन करना पड़ता। अधर्म द्रव्य है ही नहीं और रोकने वाला वह द्रव्य ही नहीं है, रोकने में सहयोग देने वाला वो द्रव्य ही नहीं है, तो धर्म द्रव्य है और उसके कारण से सतत गमन करना पड़ रहा है। तो सिद्ध परमिष्टि अनंत आलोक आकाश में गमन करते 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 चले जाते, और अनंत आलोक आकाश में भी कैसे गमन करे, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य नहीं है और जीव तो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, टेढ़ा गमन स्वभावी नहीं है, सीधा गमन स्वभावी, ऊर्ध्वगमन स्वभावी, एक सेंटीमीटर भी इधर का उधर नहीं होना, एकदम स्ट्रेट रेलवे की पटरी की तरह। पटरी तो इधर उधर घूमती है परंतु एक गति से जाएंगे सिद्ध भगवान, यहां से सिद्ध भगवान बनने के बाद एक ही गति से जाते हैं और इधर उधर एक सेंटीमीटर भी हिलते नहीं। हिल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए कि वो ऊर्ध्व गमन स्वभावी है। ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व, जरा भी ऐसा ऐसा नहीं। सिद्धो सो विश्वसो ढगई, सिद्ध भगवान विश्रसा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते, ऊर्ध्वगमन करते। अगर थोड़ा भी ऐसा ऐसा करते तो ऊर्ध्वगमन नाम ही नहीं पड़ता सिद्ध भगवान को, तो टेढ़ा गमन भी आ जाता। और धर्म द्रव्य लोकाकाश में मात्र भरा हुआ है, सिद्ध भगवान के सिद्ध भगवान बनने के बाद यहां से वहां गए और एकदम स्ट्रेट गए, इसमें धर्म द्रव्य कारण है या स्वयं का ऊर्ध्वगमन स्वभाव कारण है? स्वयं का ऊर्ध्वगमन स्वभाव कारण है, और उस स्वभाव के कारण वो केवल सीधा जाएंगे, परंतु जाने में जो कौन सहयोग दे रहा है? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य उस आत्मा को सीधा गमन में सहकारी कारण बन रहा है। अगर वे सिद्ध भगवान शरीरधारी होकर के मरण करते तो विग्रह गति में वो मोड़े गति करते, मृत्यु के पश्चात टेढ़ा मेढ़ा गमन भी हो सकता है संसारी प्राणी को। संसारी प्राणी ऊर्ध्वगमन स्वभावी नहीं है, है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। परंतु सिद्ध भगवान को के एकांत से ऊर्ध्वगमन स्वभावी ही है, ये यहां पर सम्यक एकांत लगेगा। परंतु संसारी प्राणी में, संसारी प्राणी नियम से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है ऐसा नहीं कह सकते। ये ऊर्ध्वगमन भी है, अधोगमन भी है और टेढ़ा मेढ़ा गमन भी है, ये अनेकांत है। और संसारी जीव को ये कहेंगे कि कभी कभी ये जीव यहां से मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में सीधा मतलब रुजु गति से जाकर के जन्म लेता है, इसलिए ये रुजु गति से ही जन्म लेने वाला जीव है। तो इनको इसको भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही कह सकते थे, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने उसको ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही नहीं कहा, उन्होंने कहा ये नहीं, ये तो दोनों प्रकार का है। सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभाव, तो सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन गमन स्वभावी हो गए। अगर अधर्म द्रव्य न होता, धर्म द्रव्य है, तो उनको गमन कैसे करना पड़ता? अधर्म द्रव्य नहीं है तो गमन तो करना पड़ेगा, तो कैसे गमन करना पड़ता? तीनों लोक में कहीं कहीं घूम लेते, ऐसे 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 घूम लेते। लेकिन ऐसा घूम क्यों नहीं रहे हैं धर्म द्रव्य होते हुए भी? ऊर्ध्वगमन स्वभावी ही है, ये जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी ही है। ऊर्ध्व केवल ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व सीधा ऊपर, तो फिर ऊर्ध्वगमन स्वभावी जीव वह वहां जाकर के ठहरा क्यों? अधर्म द्रव्य रुकने के लिए सहकारी कारण बना, पर धर्म द्रव्य पास में होते हुए भी इधर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से इधर उधर हिल नहीं रहा हो। अगर धर्म द्रव्य थोड़ा सा आगे बढ़े तो सिद्ध परमिष्टि भी आगे बढ़ जाएंगे। ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो पहले भी था और अभी भी है। धर्म द्रव्य अगर आलोक आकाश में भी प्रवेश करे तो सिद्ध भगवान भी उसके साथ प्रवेश कर लेंगे, और सिद्ध भगवान प्रवेश करेंगे तो संसारी जीव और पुद्गल वस्तु ये सभी प्रवेश उनके उसके साथ ही जाने लग जाएंगे। परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने इन षड द्रव्यों का जो विश्लेषण किया है ये बहुत अद्भुत विषय है, अद्भुत दार्शनिक विषय है। ये कहीं से कहीं तक शंका नहीं कर सकते इसको जानने के बाद। आप इस सृष्टि की रचना किसने की, ये प्रश्न उठता है। तो छद्मस्थ जीव तो ये कह सकता है हमने तो ऐसा सुना है सृष्टि की रचना तो किसी परमात्मा ने किया है। तो परमात्मा ने 6 द्रव्यों को ला करके इसमें कहां से डाल दिया। सृष्टि की रचना अगर परमात्मा से हुआ है तो इसके भीतर जीव आदि जो ये पुद्गल द्रव्य हैं, सक्रिय द्रव्य 2 हैं, निष्क्रिय द्रव्य 4 हैं, इन द्रव्यों को परमात्मा कहां से लाए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता कोई भी। किसी के पास उत्तर नहीं दुनिया में, किसी व्यक्ति के पास इसका उत्तर दुनिया में है ही नहीं। अगर सृष्टि को परमात्मा ने रचना की है तो रचना करने से पहले कहां थे, अलोक आकाश में। ये 3 लोक की रचना, सृष्टि मतलब 3 लोक, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, इसकी रचना किसने की, भगवान ने। और इसकी रचना करने के लिए भगवान ने किया है ये कहेंगे तो भगवान सृष्टि के अंदर थे या सृष्टि के बाहर थे, ये भी सवाल। तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यदि आप कहते हैं सृष्टि के अंदर थे तो सृष्टि पहले से थी, ऐसा सिद्ध होता है। सृष्टि के बाहर कहते हो तो सृष्टि के बाहर तो एक आकाश द्रव्य था और आकाश द्रव्य वहां था और भगवान अकेले वहां थे, तो ये मटेरियल 3 लोक की रचना करने के लिए वो भगवान वो आत्मा किधर से लाए। जादू किया, जादू तो जादू है वो नकली होता है, ये सभी नकली है क्या है? कि ऐसे ही आ गया भगवान ने ऐसा कर दिया और 3 लोक की रचना हो गई, उनके हाथ से टपक गए ये सारे पदार्थ, जड़ और चेतन 6 द्रव्य टपक गए क्या है? ऐसे तो टपक नहीं सकते। दुनिया में ऐसा जादू तो किसी के पास भी नहीं है, ध्यान रखना, किसी के पास भी नहीं है। जादू के जिस वस्तु को उसने तैयार किया वो असली हो, ऐसा कोई जादू है जादूगर? परमात्मा के पास भी ये जादू नहीं है। अगर दे दिया तो मिटना नहीं चाहिए, नाश नहीं होना, वो असली वस्तु होना। और ऐसे असली वस्तु का जन्म परमात्मा भी नहीं दे सकता, क्योंकि जड़ और चेतन 2 पदार्थ है ना। चेतन आत्मा अगर जड़ पदार्थ को जन्म दे दे तो चेतन आत्मा में जड़ पदार्थ भी पहले से थे, ये कहना पड़ेगा ना। भगवान ने अगर सृष्टि की उत्पन्न सृष्टि का निर्माण किया है तो ये पुद्गल वस्तु हैं जो दिख रहे हैं, पेड़ पौधे पत्थर सीमेंट इत्यादि, ये सृष्टि तो अनादि से है। सुमेरु पर्वत अनादि से है, जम्बूद्वीप अनादि से है, मध्यलोक अनादि से, ऊर्ध्वलोक अनादि से, आकाश के सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारक ये सब अनादि से है। इसका निर्माण किसने किया, इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए। खोजो दुनिया में कहीं भी जाओ लेकिन सही उत्तर खोज के लाओ, और नहीं मिलता है तो हम उत्तर देते हैं, और जो हम उत्तर देंगे उसमें अगर गलती हो तो उसका निराकरण करके हम सही उत्तर भी दे सकते हैं, पर जो हम उत्तर देंगे उसमें गलती ढूंढना पड़ेगा। और अगर उसमें गलती नहीं मिलती, हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो उत्तर वो सही है, इस सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। न्याय है ना, तो सर्वज्ञ देव ने न्याय के वचनों को दिया है, वो न्याय के वचन उनके सूत्र आगम कहलाते हैं। आगम है ये, आगम का मतलब ये होता है जो आगम भगवान के मुखारविंद से निकली और उसमें कोई शंका निर्माण, कोई भी व्यक्ति शंका निर्माण नहीं कर सकता, उनकी सारी शंकाओं का उत्तर जिसमें हो उसका नाम आगम। आगम यानी आना, भगवान के मुखारविंद से जो निकले वचन हैं उन वचनों को आगम कहते हैं, और उन वचनों में ऐसी योग्यता होती है, ऐसी पात्रता होती है कि हर प्रश्न का उत्तर उसमें समाहित रहता है। दुनिया का कोई भी प्रश्न निकाल करके लाओ यहां, उस प्रश्न का उत्तर इसमें है, और है इसलिए जो है उसको जब समझने के लिए हम जाते हैं और इन प्रश्नों को लेकर के जाते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर तो वहां मिलता है। भगवान कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि से है, और ये गलत है क्या? उसका विरोध करोगे क्या? ऐसा सोचोगे क्या, अरे ये भगवान, केवल ही भगवान ये कहते हैं और लोग ये कहते हैं, हम किसको माने? फिर प्रश्न चीज को देखोगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग किस बात को मानते हैं, परसेंटेज देखोगे, और फिर परसेंटेज देखने वाला दिमाग वाला नहीं रहता, वो दिमाग ही नहीं है, वो तो फिर वोट से धर्म स्वीकार करता। तुम वोट डालो, जिस पर डालोगे वो हमारा भी धर्म और तुम्हारा भी धर्म, ऐसा कहता है। तो धर्म ऐसा नहीं है, धर्म एक ऐसी वस्तु है जो प्योर फिल्टर है, और उसके लिए हमें शरण जाना चाहिए और स्वतंत्र होकर के शरण जाना चाहिए, सभी बंधनों से मुक्त होकर के शरण जाना चाहिए, कहीं भी अटकना नहीं चाहिए, किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, धारण करने के लिए उस धर्म को, उस सत्य को धैर्य धारण करना चाहिए, साहस धारण करना चाहिए और कूद जाना चाहिए, जैसे सीता ने अग्निकुंड में कूदी थी। सीता ने अग्निकुंड में कूदा था, उस प्रकार से कूदना चाहिए। यदि सत्य है तो कूदने में डर क्यों रहे हो? जलने का डर है क्या? जल जाऊंगा तो क्या होगा फिर, ऐसा डरते हो? डरना नहीं, अगर पास में सत्य है, अग्नि भी जला नहीं सकती आपको, अग्नि भी नहीं जला सकती, क्योंकि अग्नि में अग्नि देवता रहता है, वो सब संभाल लेगा, चिंता मत करो। अग्नि में अग्नि देवता रहता है क्या? नहीं। तो ये देव लोग क्यों हैं? सत्य की रक्षा के लिए कि असत्य की रक्षा के लिए? और ये धर्मात्मा जो बैठे हैं ये किसके लिए हैं? सम्यक दृष्टि, सत्य की रक्षा के लिए कि असत्य की रक्षा के लिए? और धर्म अगर स्वीकार करोगे अपने जीवन में, सत्य को स्वीकार करोगे, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, डरो नहीं, डरो नहीं, जो सत्य है उसको स्वीकार करो। बहुमत को जुटाने का प्रयास ये सौक्षम सम्यक्तों का प्रभाव है, सम्यक प्रकृति का प्रभाव है, इसके प्रभाव से दूर रहो। क्षायोक्षम सम्यक दृष्टि हो, रहो, कोई बात नहीं, रहो, हाथ में लकड़ी है, रहने दो, पर उस लकड़ी को स्थिर बनाने का अभ्यास तुम नहीं करोगे तो लकड़ी भी चंचल रहेगी। उदयागत सम्यक प्रकृति आपको यह नहीं कहती कि हे वृद्ध, तुम अपने हाथ को हिलाओ, ये नहीं कहती, क्योंकि वह सम्यक प्रकृति अचेतन प्रकृति है, जीव नहीं है। हम हिलना चाहे तो इसके सहारे से हिलते हैं, सम्यक प्रकृति भी धर्म द्रव्य की तरह है। धर्म द्रव्य आपको जबरदस्ती चलाता नहीं, सहकारी कारण है। तुम चलना चाहो तो धर्म द्रव्य सहायक होता ही है। उसी प्रकार क्षायोपशम सम्यक्तो में तुम अतिचार आदि दोष लगाना चाहते हो तो सम्यक प्रकृति कहता है जब तुम लगाओगे मैं काम में आऊंगा, और लगाना नहीं चाहोगे तो मैं काम में नहीं आऊंगा, तुम्हारे हाथ में रहूंगा। तुम नहीं हिल रहे तो मैं भी नहीं हिल रहा हूं, और तुम हिला रहे हो तो मैं भी हिल रहा हूं, ऐसी लकड़ी कहती है। जो क्षायोपशम सम्यक दृष्टि होता है वह शुभोपयोगी होता है। शुभोपयोग में कमी नहीं आना चाहिए। शुभोपयोग यदि अशुभोपयोग के सहारे से किसी भी बात को सुन करके यदि उधर घूमने लगता है तो पिट जाता है वो। अशुभोपयोग पिटेगा, क्षोपशम सम्यक तो पिटेगा, और फिर हाय हाय इतराय इतराय ये क्या हो गया, मैं वो चाहता था और यहां पर आ गया, गिर गया, मेरी लकड़ी चली गई, लकड़ी भी चली गई और ये अकेले जाके गिर पड़े। कहां गिर गए? अशुभोपयोग में गिर गए। अशुभोपयोग में, अशुभोपयोग लकड़ी को छीन लेता है, अशुभोपयोग सम्यक्त को छीन लेता है। अशुभोपयोग क्षायिक सम्यक्त हो तो नहीं छीन सकता। अशुभोपयोग तीन सम्यक्तों की चोरी कर सकता है, छीन लेता है। कौन कौन से? प्रथमोपयोग सम्यक्त, क्षायोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। ये सम्यक दृष्टि प्रथम गुणस्थान तक जा सकती है, और जाने का कारण क्या है? मोह ही कर्म। हम मोह में अटक जाते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं, अंधश्रद्धा हो जाती है उनके ऊपर, और सच को हम संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं। जो सत्य होता है उसमें संशय पैदा होता है, हाँ, और लोकापवाद से डरते हैं, यानी लोगों से तो डरते हैं। लोकापवाद क्या चीज है? राम की जैसे, राम ने तो बहुत अच्छा किया था सीता के प्रति, पर राम जैसे करने की भी शक्ति नहीं इनके पास, और सीता को उपदेश देते हैं, हे सीता तुम्हारी वजह से हमको सुनना पड़ रहा है, हे सीता तुम्हारे वजह से हमको सुनना पड़ रहा है, मेरी निंदा हो रही है, इसलिए मेरी निंदा ना हो इसलिए तुमको जंगल भेज रहे हैं हम। और सीता भी कहती है जंगल भेजना तो भेजो, स्वीकार करती हूं, जंगल कोई बड़ी बात नहीं, परंतु ये जंगल भेजना अगर आपका मेरे ऊपर से विश्वास उड़ रहा हो तो तुम क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो। मेरे पास सील है या नहीं तुमको पता है, और वो पता जो है वो सत्य है। जो पता है वो सत्य है ना। मैं सीलवती हूं क्या? राम को ये बात पता नहीं था, था, और वो सत्य था, और सत्य से क्या दूर थे राम? नहीं, पूरा विश्वास था। परंतु जंगल क्यों भेजा जा रहा है? वातावरण को ठीक ठाक करने के लिए, माहौल को ठीक ठाक करने के लिए। और माहौल ठीक ठाक कब हुआ? केवल जंगल में जाकर केवल आने मात्र से नहीं हुआ, परीक्षा एग्जाम देकर के आना है अंदर, एग्जाम देकर के अंदर आना है, और उसने एग्जाम दिया, दिया एग्जाम सीता ने दिया, डरी नहीं हो, धर्म के लिए मरने को भी तैयार हो गई, अग्निकुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई। अग्नि से कहा, हे अग्नि अगर मैं तुम्हारी तरह गरम और सत्य, सत्य की गर्मी मेरे पास ना हो तो मुझे जला देना, अगर गर्मी हो तो मैं भी गर्म और तुम भी गर्म, मुझे तुम कैसे जला सकते हो? तुम्हारे पास मैं आ जाऊं या तुम मेरे पास आ जाओ तो भी जीवित रहेंगे हम दोनों। तो सीता ने ऐसा कहा अग्नि से, अगर मेरे पास सील हो और राम को छोड़कर किसी अन्य पर हमने भाव किया हो तो हे अग्नि तो क्षण भर में जला देना, लेट भी मत करना, मेरे से पूछना भी नहीं। देखो मान रही हो क्या? ऐसा भी मत कहो, क्षण भर में जला देना। इतना सौ टंच सत्य थी सीता, और उस सीता ने अग्नि का शरण जब ले लिया तो अग्नि सीता की तरह हो गया, सीता शीतल, सीता शीतल, अग्नि भी शीतल। कुंड में पानी भर गया और वह बाहर आ गया, बहने लगा। सभी खड़े थे, क्या होता है देखेंगे, क्या होता है देखेंगे। अब वो निंदा करने वाले राम की, संशय करने वाले, राम जैसे महान महापुरुष के ऊपर और सीता जैसे शीलवती नारी के ऊपर संशय की दृष्टि से देखने वाले वहां आए थे कि नहीं आए थे देखने के लिए? अग्निकुंड में क्या होता है क्या नहीं होता, आए थे। वो बड़े कुतूहल से देख रहे होंगे, अरे सीता तो चार महीने तक रही, कुछ तो हुआ होगा, परिणामों में डगमगाया होगा, परिणामों में शीतलाचार आया होगा। लेकिन जब अग्नि का शरण लिया गया तो वह कुंड पानी से भर करके जब उछलने लगा, सारे के सारे राम लक्ष्मण और सारी प्रजा उनके पांवों में जल आ गया। जैसे अभी प्रलय हो गया था, एकदम जल आ गया, चमत्कार हो गया, धर्म में चमत्कार है, अधर्म में चमत्कार नहीं होता। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां चमत्कार है। चमत्कार का मतलब आत्मा के भीतर आत्मा ही अपना रक्षण कर लेता, ऐसा नहीं, धर्म धर्म की रक्षा करता है, ये बात है। जिसके पास धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए धर्मात्मा आएगा क्या नहीं आएगा? और अग्नि को जल बनाने वाली सीता थी या वहां पर और कोई था? क्या जादू हो गया, जादूगर कोई आकर के बैठा होगा वहां? नहीं, ये जादू से काम नहीं चलने वाला। प्रयोग करके देखना हो तो देख लो, एक जादूगर को बुला लो, मैं अग्नि में कूद रहा हूं और मुझे जरा उसको जल बना के बताओ, करके देखो एक बार, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो उन लोगों का काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो काम उन लोगों का है जो सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। किसका काम है ये? देवों का काम, देव कर सकते हैं ऐसा। अग्नि को जल बना सकते हैं और जल को भी आग बना सकते हैं। देवों ने किया ये कौन से देवों ने किया? सम्यक दृष्टि देवों ने या मिथ्या दृष्टि देवों ने? सम्यक दृष्टि देवों ने। तो सम्यक दृष्टि की रक्षा सम्यक दृष्टि जीव करता है क्या नहीं करता है? तो उस समय में सीता की रक्षा जिन देवों ने भी किया हो, और देवों ने ही किया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, वो कोई जादू नहीं था, वो कोई जादू टोना नहीं था, देवों ने रक्षा की थी। और ऐसे देव जब सीता की रक्षा कर सकते हैं तो सम्यक दृष्टि तो थे, और वो देव कौन से सम्यक दृष्टि रहे होंगे? शौशम सम्यक दृष्टि तो है, शौशम सम्यक दृष्टि इतना बड़ा काम कर सकता है, लेकिन यहां की शौशम सम्यक दृष्टि डर के भाग रहे हैं, उनकी रक्षा करने नहीं आ रहे, दूर ही बैठ करके डर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? ये राम को ही समझाना चाहते हैं, आप ही गलत हो, आपकी वजह से हमारे ऊपर निंदा हो रही है। तो राम को समझाने की जरूरत नहीं, राम जानता है किस समय क्या करना क्या नहीं करना। राम तो महापुरुष है, राम जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी भूल चूक करके भी ये काम नहीं करना कि गुरु को समझाने के लिए चले गए किसी बात को। गुरु ज्ञानी है मालूम है, सैमी है मालूम है, रत्नत्रयधारी मालूम है, पर उसमें संशय आ गया तो सौक्षम सम्यक दर्शन टिकेगा क्या आपका?
नहीं
टिकेगा। तो ऐसा काम नहीं करना, समझ गए? स्थितिकरण भी तो करना पड़ता है गुरु को, स्थितिकरण। गुरु के संबंध में कोई भी कुछ भी कहे दिमाग में नहीं लेना, गुरु के पास जाकर के चर्चा करो कि महाराज ऐसा कोई ये दोष है या नहीं। शंका हो तो चर्चा करो, शंका ना हो तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे कहो लोग निंदा कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी उपदेश देंगे नहीं, देंगे क्या नहीं गुरु? देंगे। तो ऐसा करो ना, ऐसा करो, गुरु के पास जाओ और कहो कि लोग निंदा कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, आपकी या हमारी, किसकी कर रहे हैं? गुरु की निंदा करते हैं क्या लोग? नहीं करते। किसकी करते हैं? जो गुरु के आसपास में रहते हैं उनकी करते हैं, क्योंकि उनके पास फुकट के मोबाइल बहुत है और वो बैटरी खर्च कैसे होगी? चार्ज किया है तो खर्च भी तो करना है। तो फोन पर फोन कर करके आपके दिमाग को बिगाड़ने का कोशिश करेंगे वो, लेकिन डरना नहीं। ऐसा कभी संदर्भ आया तो आया नहीं आपके जीवन में, अभी आ सकता है। सच्चे गुरु को लेकर के जो संशयवादी होते हैं वो शंका करते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, परिपूर्ण ज्ञान न होने के कारण से वो भटक जाते हैं और भटक करके ही ऐसी शंका पैदा करते हैं। तो भटके हुए लोगों के पीछे चलोगे तुम खुद भी भटक जाओगे। और आप नहीं भटकोगे तो लोग तुमको फोन ही नहीं करेंगे। क्यों? वो बहुत दृढ़ है, वो बहुत दृढ़ है, ऐसा कह करके वो पागल है, वो उसके पीछे पागल बन गया। किसके पीछे? सच्चे गुरु के पीछे वो पागल बन गया है, हमारी सुनता नहीं, ऐसा कह करके वो फोन का उपयोग करना बंद कर देगा। आप दृढ़ बनोगे तो मोबाइल का खर्चा उनको नहीं आएगा। आप डावाडोल हैं तो फालतू वो खर्चा करके फोन करते रहेंगे और उनका खर्चा वह आपके वजह से हो रहा है, वो बिल कौन भरेगा? वो बिल कौन भरेगा? आप भरोगे? नहीं भरोगे। पर बेचारे आपके कारण से उनका पैसा खर्चा हुआ, बिल आया, तो उनको कौन भरेगा? इसलिए अपने क्षायोक्षम सम्यक्तु को कैसे रखना, इसकी शिक्षा इस उपदेश से मिलता है। जहां जहां सम्यक्त होता है वहां वहां शुभोपयोग होता है, और जहां जहां सम्यक्त नहीं होता वहां वहां शुभोपयोग नहीं होता। जहां जहां मिथ्यात्व का उदय रहता है या अनंतानुबंधी का उदय रहता है या सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, वहां वहां अशुभोपयोग रहता है, और जहां जहां अशुभोपयोग रहता है इन तीन में से कोई न कोई न कोई किसी न किसी का उदय रहता है, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का या सम्यक मिथ्यात्व का। तो अशुभोपयोग का अस्तित्व गुणस्थानों में देखोगे तो किस गुणस्थान तक रहेगा है? अशुभोपयोग किस गुणस्थान तक रहेगा? अशुभोपयोग पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में रहेगा, क्योंकि दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से हुआ है, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय से हुआ है, और पहला गुणस्थान मिथ्यात्व के उदय से हुआ है। तो ये तीन प्रकृतियां जहां उदय में हो वहां अशुभोपयोग समझना बिल्कुल क्लियर कट है। भगवान की वाणी यही है, इसमें रंच मात्र भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। अगर प्रश्न उठता हो तो चर्चा करो, कोई बात नहीं, और क्लियर होगा। परंतु अशुभोपयोग जहां भी रहेगा वहां इन तीन प्रकृतियों में से किसी न किसी का उदय रहेगा, क्योंकि इनका अविनाभावी संबंध है अशुभोपयोग के साथ। जहां जहां अशुभोपयोग है वहां वहां मिथ्यात्व का, या तो अनंतानुबंधी का या तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय अवश्य रहेगा। ये सिद्धांत की बात है, और ये सिद्धांत की बात अगर आपको मजबूत हो गई तो इन तीन उपयोगों पर चर्चा करना कठिन नहीं होगा, बिल्कुल निशंक, कोई भी शंका नहीं रहेगी, निशंक आप चर्चा कर सकते हैं। और जहां जहां सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, अप्रत्याख्यानावरणी का उदय रहेगा, केवल अप्रत्याख्यानावरणी यानी अनंतानुबंधी उदय रहित, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से रहित और मिथ्यात्व के उदय से रहित, ऐसा अप्रत्याख्यान का उदय जहां रहेगा वहां शुभ उपयोग रहेगा। जैन धर्म के सिद्धांत कर्म सापेक्ष हैं, केवल गुणस्थान और अध्यात्म के दृष्टिकोण से लेकर के हम समय सार को नहीं समझ पाएंगे। समय सार ग्रंथ भी कर्म सापेक्ष है क्या कर्म निरपेक्ष है? गुणस्थान कर्म निरपेक्ष है क्या कर्म सापेक्ष है? गुणस्थानों की उत्पत्ति ही कर्मों के कारण से हुई है। इस गुणस्थान में ये कर्म है इसलिए ये गुणस्थान है, इस गुणस्थान में ये कर्म नहीं है इसलिए ये गुणस्थान है। तो कर्म सापेक्ष तो है ही। शुभोपयोग कहां से कहां तक होता है इसका भी कथन भगवान ने किया है। शुभोपयोग का सद्भाव सम्यक्त्व के साथ है, जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां शुभोपयोग है। और सम्यक दर्शन चार में से कोई भी हो, चाहे औपशमिक हो, द्वितीयोपशमिक हो, क्षौपशमिक हो, क्षायिक हो, जहां सम्यक्त्व है और इन चार में से कोई भी सम्यक्त्व है वहां पर शुभोपयोग रहेगा ही। परंतु सम्यक्त्व के भी दो भेद कर लेना, सराग और वीतराग की अपेक्षा से। सराग सम्यक दर्शन जो होता है वो शुभोपयोग के साथ होता है, और वह सराग सम्यक दर्शन चार प्रकार का समझना। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सराग भी है और वीतराग भी है। और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन बोलो क्या वीतराग ही है? हाँ, सराग भी है, क्योंकि जब श्रेणी से चढ़ता है द्वितीयोपशम सम्यक, तो उससे श्रेणी चढ़ा और नीचे आया चतुर्थ गुणस्थान तक आया, तो चतुर्थ गुणस्थान में तो शुभोपयोग ही है, सराग है उस समय, सराग है। जब श्रेणी में रहेगा तो वीतराग रहेगा, तो वो सराग भी है और वीतराग भी है। और क्षायिक सम्यक दर्शन दोनों कहो, क्षायिक सम्यक दर्शन को दोनों कहो, क्षायिक वीतराग ही है ऐसा नहीं कह सकते। जब वो भी वीतराग अवस्था में जाएगा तो वीतराग, सराग अवस्था में आएगा तो सराग। तो सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान और सराग सम्यक चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जहां जहां व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वहां वहां शुभोपयोग भी है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ शुभोपयोग का अविनाभाव संबंध मुनि की अपेक्षा से घटित करना, मुनि की अपेक्षा से। जहां जहां मोक्ष मार्ग है व्यवहार मोक्ष मार्ग, वहां वहां शुभोपयोग है, मुनि की अपेक्षा से छठे सप्तम गुण स्थान में घटित कर लेना। और श्रावक की अपेक्षा से क्या घटित करना, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि तो है, राम क्षायक सम्यक दृष्टि थे, क्षायक सम्यक तो भी हो सकता है चतुर्थ में, द्वितीय सम सम्यक तो भी हो सकता है जो श्रेणी से उतर करके नीचे आए हैं, या श्रेणी में मरण हुआ है और द्वितीय सम सम्यक तो का काल बचा है और विग्रह गति में जीव जा रहा है और सम्यक तो का काल अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उस टाइम में कौन सा सम्यक दर्शन है उस आत्मा के पास? द्वितीयोपम सम्यक तो के साथ मरण हुआ है और सम्यक तो का काल अंतर्मुहूर्त है और सम्यक तो का काल ज्यादा है और मरण उससे पहले हुआ है, सम्यक तो के काल में हुआ है लेकिन सम्यक तो का काल खत्म होने से पहले मरण हुआ है, तो विग्रह गति में कौन सा सम्यक दर्शन रहेगा? द्वितीयोपम सम्यक तो रहेगा। तो गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा गुणस्थान रहेगा। तो चौथे गुणस्थान में रहने वाला द्वितीयोपम सम्यक दर्शन शुभोपयोग रूप है या अन्य रूप है? शुभोपयोग रूप है, मतलब सराग सम्यक दर्शन है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन उस काल में सराग रूप है, सराग रूप है। अब चलो क्षायिक सम्यक दर्शन का हम विचार करते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन केवल वीतराग सम्यक दर्शन ही है या सराग सम्यक दर्शन भी? दोनों भी है। तो किस किस गुणस्थान में यह सराग रूप है? चौथे गुणस्थान में सराग है, पंचम गुणस्थान में सराग है, छठे गुणस्थान में सराग है, सप्तम गुणस्थान के प्रवृत्ति सप्तम गुणस्थान सविकल्प सप्तम गुणस्थान में भी सराग है। जहां शुभोपयोग है वहां सराग है, निर्विकल्प में ही वह वीतराग है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन चार अनंतानुबंधी और तीन दर्शन मोनी, इनकी पूरी तरह से क्षपना करने के बावजूद भी सराग है। तो ये सरागपना किस अपेक्षा से है? शुभोपयोग की अपेक्षा से, शुभोपयोग की अपेक्षा से सरागता आती है इसमें। और इस शुभोपयोग को शुभ क्यों, शुभोपयोग क्यों कहा? नहीं, शुभोपयोग का लक्षण बताइए हमें, शुभोपयोग का क्या लक्षण है, अशुभोपयोग का क्या लक्षण है, शुद्धोपयोग का क्या लक्षण है। लक्षण को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे ये उलझा हुआ विषय समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसको बहुत समय देना चाहता था लेकिन टाइम तो हो गया, भूमिका आज बन गई है तीनों उपयोगों का, भूमिका तो बन गई ना, तो आज लक्षण कह करके छोड़ देता हूं, लक्षण कह करके छोड़ देता हूं। अशुभोपयोग यदि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय के कारण या सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण अशुभोपयोग होता है, तो इसके उदय में जीव को परमार्थ के प्रति आत्म तत्व के प्रति रुचि रहती है या नहीं?
नहीं।
यह आपको उत्तर पहले से मालूम है। तो आत्म तत्व की रुचि से भिन्न जो जीव है वो तीन गुण स्थानों में रहते हैं, पहला दूसरा और तीसरा गुणस्थान। इन तीनों गुण स्थानों में जो जीवात्मा रहता है आत्मरुचि से रहित रहता है और उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसका इंटेंशन जो भी रहता है भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए रहता है, वो भौतिक वस्तुओं में अटक जाता है, ख्याति लाभ पूजा में अटकता है। ध्यान से सुनना, ख्याति लाभ पूजा अलग बात है और भौतिक वस्तु को पाने की इच्छा अलग बात है। हालांकि लाभ को आप इच्छा कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की, पर बहु में या इस बहु में, वो जो भौतिक इंद्रिय विषय को पाने की इच्छा होती है वो लाभ है, वो लाभ चाहता है। क्या करके लाभ चाहता है? तो धार्मिक क्रिया अनुष्ठान करके लाभ चाहता है, यानी कि धर्म की क्रियाओं को भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए प्रयोग करना चाहता है। यानी धर्म तो रत्न है और रत्न को वह गिरवी रखना चाहता है क्या करने के लिए, आलू प्याज खरीद करके खाने के लिए, यानी आलू प्याज श्रेष्ठ है उसके लिए। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्न, ये रत्न इसका कोई महत्व नहीं उसके सामने। वो शराबी की तरह होता है, शराबी को अपनी धन, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपनी पत्नी, ये कुछ नहीं लगता। शराब पीना हो, अरे आपको मैं पैसा देता हूं, अपनी पत्नी को हमारे लिए इतने दिन काम करने के लिए घर का काम है भेजो, तो तैयार होता है वो शराब पीने, क्योंकि उस पैसे को लेकर के शराब पीना है, लेकिन पत्नी को वो काम पर भेजना है, पत्नी कमाएगी और ये शराब पिएगा। शराब पीने वाला जिस प्रकार से बुद्धि से भ्रष्ट रहता है, उसी प्रकार अशुभोपयोगी मिथ्यात्व के उदय के कारण से, सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण से और अनंत अनुबंधी के उदय के कारण से, इसमें से किसी भी एक के उदय के कारण से बुद्धि भ्रष्ट रहता है। उसको धर्मानुष्ठान तो चाहिए पड़ते, लेकिन ये धर्मानुष्ठान की क्रियाएं जो केवल मोक्ष के कारण है, उन मोक्ष के कारणीभूत क्रियाओं को भी भौतिक सुख पाने के क्षेत्र में उपयोग करता है, तो ये प्याज को खाने के लिए रत्न को गिरवी पर रखने का काम है क्या नहीं है? ये महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये मोक्ष के कारणीभूत कारण है, मोक्ष के कारण के लिए इनका उपदेश दिया गया है, या सुख संसार सुख को पाने के लिए, मोक्ष के लिए। अगर कोई इन्हीं व्रतों के आधार से संसार सुख की अपेक्षा करता है तो वो शराबी है क्या नहीं? शराबी तो फिर भी ठीक है, अपनी पत्नी को भेज रहा है वो। ये अपनी आत्मा के रत्नों को, जो असली संपत्ति है, ये संपत्ति को ही गिरवी में रख रहा है। कल केवल ज्ञान हो जाएगा यदि इसको, तो केवल ज्ञान को भी गिरवी रख करके प्याज खाने के लिए जाएगा, इसलिए इनको केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए इनको केवल ज्ञान ही नहीं होता। केवल ज्ञान का महत्व ही मालूम नहीं है, सम्यक दर्शन का महत्व मालूम नहीं, ज्ञान का महत्व मालूम नहीं, संयम का महत्व मालूम नहीं। इन्हीं रत्नत्रय को पाने का साधन ये पंच द्रव्य व्रत है, द्रव्य अनुष्ठान है। इस द्रव्य अनुष्ठान को, यानी अहिंसा, सत्याचार और ब्रह्मचर्य द्रव्य अनुष्ठान है ना, बाह्य अनुष्ठान है। इन अनुष्ठानों से पुण्यबंध अवश्य होता है, चाहे अशुभोपयोगी महाव्रत धारण करे, चाहे शुभोपयोगी महाव्रत धारण करे, इससे क्या होता है, पुण्य का आश्रव बंद होता है, लेकिन क्या कर्म की निर्जरा नहीं होती? होती है, पर कब होती है? अशुभोपयोग को त्याग कर शुभोपयोग में आकर जब इन व्रतों का पालन करेंगे, तब ये व्रत संवर और निर्जरा के कारण बनेंगे। शुभोपयोग के साथ ये संवर निर्जरा के कारण है, और शुद्धोपयोग के साथ तो केवल ज्ञान के कारण है यही महाव्रत, शुद्धोपयोग के साथ। शुभोपयोग को त्यागना पड़ेगा, शुद्धोपयोग में जाना पड़ेगा। शुद्धोपयोग का मतलब मैं किसी भी शुभ काम को भी नहीं करूंगा, मन वचन काय से कोई भी शुभानुष्ठान भी नहीं करूंगा, ऐसा सोचकर मुनि महाराज क्या करते हैं, उपदेश देना बंद करते हैं, चर्चा बंद करते हैं, विहार बंद करते हैं, आहार लेना बंद करते हैं, क्या करने लगते हैं, केवल सामायिक के अलावा किसी के शरण में नहीं जाते। तो ये सभी क्रिया अनुष्ठान जो कुछ भी प्रवृत्ति परक होते हैं, ये इसमें शुभानुराग रहता है आत्मा के भीतर। इस शुभानुराग के कारण से, और ये शुभानुराग किस कषाय के कारण से शुभानुराग होता है, संज्वलन कषाय के कारण से मुनि के लिए। और इस संज्वलन कषाय के उदय में जो प्रशस्त राग होता है, इस प्रशस्त राग के कारण से उस अवस्था में रहने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये प्रशस्त हो जाते, यानी राग से रंजित हो जाते। और ये राग से जब रंजित होते हैं तो शुभ कहलाते हैं, शुभ यानी प्रशस्त, और उससे जो उपयोग बनता है वो शुभोपयोग। उससे जो उपयोग बनता है ज्ञानोपयोग, वही उसी ज्ञानोपयोग का नाम शुभोपयोग। हमारा ज्ञानोपयोग निरंतर प्रवाहशील है, इसी ज्ञानोपयोग के भीतर जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व इनका असर रहता है, इनका प्रभाव रहता है, तब यही ज्ञानोपयोग अशुभोपयोग नाम पाता है। यही ज्ञानोपयोग जो जानने और देखने रूप ज्ञानोपयोग है, वही यही ज्ञानोपयोग अशुभोपयोग रूप होता है। और यही ज्ञानोपयोग जब इनके उदय को हटा करके ऊपरी गुण स्थानों में जाता है तब यह शुभोपयोग में आता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर प्रवृत्ति परक सविकल्प सप्तम गुणस्थान तक जीव शुभ रागी होता है। उस गुणस्थान में जो कुछ भी कषाय का उदय है उसके उदय में शुभानुराग होता है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में जीव ये चाहता है कि मैं नित्य दर्शन करूं, स्वाध्याय करूं, ये शुभ परिणाम है। ये शुभ परिणाम अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की देन है, और इनके उदय के कारण से वह मिथ्यात्व में नहीं जाता, अशुभोपयोग से बचाता है। यह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय अशुभोपयोग से बचाता है ये कषाय। ये नहीं कहता कि मैं उदय में हूं और तुम इन धर्म के अनुष्ठानों को करते हुए इसके फलस्वरूप विषय कषाय को मांगो, भौतिक सुख को मांगो, आत्मा के सुख को छोड़ दो, ये प्रेरणा नहीं देती। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कहती है तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुमको नीचे के गुणस्थानों में नहीं जाना है, अपने उपयोग को शुभ बनाए रखो, परंतु शुभ में तुम कुछ जो कुछ भी झगड़ा करना है शुभ में करो, शुभ को लेकर के झगड़ा करो चलेगा, ये मेरा मंदिर है कहो चलेगा। तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय ये मेरा मंदिर कह सकता है। ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से होता है ऐसा राम को हो रहा है कि ये मेरा लक्ष्मण है, ये मरा नहीं है। हजार लोग समझा रहे हैं कि मरे हैं, संस्कार करो, कंधे पर से उतार दो। नहीं नहीं, मेरा लक्ष्मण मर नहीं सकता। ये कौन सी कषाय का उदय? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय। और ये ऐसा कब तक कहता रह सकता है? छह महीने तक कहता रह सकता है। 6 महीने के बाद अपने आप डाउन हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को, क्योंकि इधर अनंत अनुबंधी का उदय तो आना नहीं है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कहता है कि देखो मेरा है, मेरा है, मेरा। 6 महीने से अगर उल्लंघन हो गया तो अनंत अनुबंधी के पास उस आत्मा को पहुंचा देता है अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। अब मेरे पास योग्यता नहीं, 6 महीने तक तो हमने जो कुछ करना था कर लिया, संभालना था संभाल लिया, इसके आगे भी तुम स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो, इस मोह को लक्ष्मण के मोह को छोड़ना नहीं चाहते हो तो जाओ, चौथे गुणस्थान में नहीं रह सकते, जाओ पहले गुणस्थान में और फिर कहो अनंत काल तक लक्ष्मण मेरा है। भेद विज्ञान से रहित होकर पर पदार्थों से भिन्न आत्मा के इस तत्व को भूलकर कहते रहो, अनंत काल तक कहते रहो। तो जहां जहां अनंतानुबंधी का उदय है वहां आपा पराया का भेद विज्ञान नहीं रहता। मिथ्यात्व का उदय है तो अंधश्रद्धा रहती है, वहां पर भी शुभोपयोग होना संभव नहीं है, पहले गुणस्थान में शुभोपयोग नहीं है। एक गुणस्थान में दो उपयोग नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पर्याय है, शुभोपयोग भी पर्याय है, अशुभोपयोग भी पर्याय है, शुद्धोपयोग भी पर्याय, ये सभी पर्याय है। एक समय में एक पर्याय रहेगी कि दोनों रहेंगे? एक ही रहेगी। आप एक समय में मनुष्य भी हैं और देव भी हैं, ऐसा है क्या? ये हो सकता है कि आपने देवायु को बंद किया है, देव बनने वाले हो लेकिन देव पर्याय की उत्पत्ति है कि आपके पास नहीं है। उस वह उदय में जब आएगा, देवायु जब उदय में आएगा तब आप देव बनोगे, देव पर्याय प्रकट रूप से मिलेगी आपको, परंतु इसमें कर्म तो है आपके पास, देव बनने की योग्यता है, पात्रता है, परंतु अभी देव नहीं है, देव बनने की योग्यता है। जो शुभोपयोगी है वो शुद्धोपयोग की शुद्धोपयोगी बनने की योग्यता रखता है, पर जब तक शुभोपयोग का त्याग नहीं करता, इसको त्याग नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक अभाव होता है। जब शुद्धोपयोग में जाकर के ठहर जाता है तो अशुभोपयोग का अभाव होता है, उसको वो त्याज्य नहीं है, वो भजनी है। शुभोपयोग शुभोपयोग भजनी है, त्याजनी नहीं है। त्याग कर बुद्धिपूर्वक उसको त्याग नहीं किया जाता। देखो जब हम सामायिक में बैठते हैं तो ये कहते हैं, हे शुभोपयोग मुझको छोड़ो तुम, मैं जा रहा हूं शुद्धोपयोग में, समझाता हूं शुभोपयोग को, नहीं मुझे सामायिक करना इतना विकल्प आता है, मैं सामायिक में लीन होता हूं तो शुद्धोपयोग में जाता हूं। जब शुद्धोपयोग में जाता हूं तो क्या शुभोपयोग को त्याग करता हूं बुद्धिपूर्वक? नहीं, मैं बुद्धिपूर्वक नहीं त्याग करता। जब मैं अपने स्वभाव में आता हूं वो स्वयं अपने स्वभाव से वो भी छूट जाता है। शुभोपयोग से हमें बचना नहीं है, संयम से शुभोपयोग से जो बचने की चेष्टा करता है वो अज्ञानी है। संयम से भी बचने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संयम ही सब कुछ है। संयम के कारण से ही सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों पवित्र बनते हैं, मंगल बनते हैं, वंदनीय हो जाते हैं और पूजनीय होते हैं। संयम रहित सम्यक दर्शन वंदनीय कहां है? संयम रहित सम्यक ज्ञान वंदनीय कहां है, पूजनीय कहां है? यदि वंदनीय पूजनीय कहते हैं तो नमोकार मंत्र में सबको ले लेते, जो देवगति में सरी सभी सम्यक दृष्टि है वो सब शुभोपयोगी है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानी है, संयम तो है नहीं उनके पास, वो सब वंदनीय पूजनीय है। ऐसा होता तो वंदनीय पूजनीय कौन होते हैं कौन नहीं होते, ये संयम के आधार से डिपेंड करता है। संयम ना हो तो कुछ नहीं, संयम से तो सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में पूजनीयता आती है, निर्जरा होती है, और साक्षात संयम ही मोक्ष का कारण है। इसलिए संयम से अपने को परहेज नहीं करना चाहिए। संयम का मार्ग उपादेय मार्ग है, चारित्र आश्रव और बंध का कारण है। शुभाश्रव होता है ये कह करके, अद्वा तद्वा सोच करके उससे बचने का यदि हम प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ी अनभिज्ञता है। अनभिज्ञ जीव कभी भी न तो वो सम्यक दर्शन पा पाएगा, क्योंकि श्रद्धा ही उल्टी हो जाएगी ना। चारित्र है क्योंकि वो उससे पुण्याश्रव के अलावा कुछ नहीं होता, और न ही हमको पुण्याश्रव चाहिए और न ही पापाश्रव चाहिए। ऐसा कह करके यदि हम ऐसा परिग्रह सहित वैसा ही बैठेंगे, न अभ्यंतर परिग्रह त्याग कर रहे हैं, न बहिरंग परिग्रह त्याग करने का कोई लक्ष्य बना रहे हैं, ऐसा ही बैठेंगे, शुभ भी है और अशुभ भी है, पुण्याश्रव भी है और पापाश्रव भी है, एक ही जगह बैठेंगे तो क्या कल्याण होगा? तो क्या केवल ज्ञान होगा? यदि हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सबसे सरल मार्ग निकले जाएगा इससे। और ऐसा कुछ है तो हम भी आपके साथ आएंगे, पर एकाध कोई व्यक्ति ऐसा तैयार हो जाए कि परिग्रह अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले संयम के बिना, चतुर्थ गुण स्थान में संयम के बिना शुद्धोपयोग पाले, या वीतराग सम्यक तो पाले, वीतराग सम्यक ज्ञान पाले, वीतराग सम्यक चारित्र पाले, केवल ज्ञान पाले। जहां शुद्धोपयोग है वहां तो केवल ज्ञान होता है, और यदि शुद्धोपयोग नीचे के गुण स्थानों में यदि है कहते हैं तो केवल ज्ञान भी आपको होना ही चाहिए, और हो जाए तो हमको बता देना, उस दिन हम उसको स्वीकार करेंगे। करूंगे कि नहीं करूंगा, मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? माता पच्छी करके ऊपर के गुण स्थानों में जाकर माता पच्छी करके उसको धारण करने की क्या जरूरत है? जब चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है तो और अच्छी बात है, पर किस तरह से होता है? तो यदि चतुर्थ गुण स्थान में हो गया तो एक गुण स्थान में एक समय में दो उपयोग हो गए, शुभोपयोग प्लस शुद्धोपयोग, ये संभव है क्या? तो यदि ये संभव है तो फिर जहां शुद्धोपयोग होता है वहां शुभोपयोग को भी होना चाहिए। दोनों एक साथ रहना संभव है तो उसके साथ भी होना चाहिए, दोनों एक साथ रहना चाहिए है तो ये शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये दोनों अशुभोपयोग के साथ भी हो, दो हो सकते हैं तो तीन भी हो सकते हैं। फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकृति नियम है कि एक समय में एक ही उपयोग होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, और होंगे तो उस गुण स्थान में ही होंगे, वहां जाने पर ही होगा। इस प्रकार कर्म सिद्धांत सापेक्ष जो गुण स्थानों का कथन है उसका चिंतन चर्चा मनन करेंगे तो और भी विषय क्लियर होता जाएगा और हमारा ज्ञान परिशुद्ध होगा। ज्ञान को जो परिशुद्ध करता है उनको शुभोपयोग पाना और शुद्धोपयोग पाना कोई कठिन बात नहीं है। टाइम बहुत हो गया। अहिंसा परमो
धर्म।
कल भी यही चलेगा विषय, तीन उपयोग।
अच्छा।